علم کے جو جاننے والے ہوں گے ان پر سزا لعنت ہوگی. کیوں؟ وہ کسی اور کی بات ماننے کو تیار ہیں. کل کا آیا, کہاں سے تعلیم لیا ہے تو نے؟ چرچا کرتا پھرتا ہے, تو جایا کہاں سے ہے تو کیا جانے؟ ہم نے وہاں سے تعلیم رکھی ہے. ہم یہ جاننے والے ہیں. ان کو اپنے علم کا ہی ابھیمان رہتا ہے, بھلے کوئی سندر ساتھ پر راجی مرا کی مہر ہو جائے, وہ بات کر بھی دے وہ نہیں مانے گا. یہ پہلے سے قرآن میں 1100 سال پہلے محمد صاحب نے لکھا تھا کہ اس وقت جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوں گے, قرآن کے عالم فاضل کبھی بھی ان کی باتوں پر وشواس لائیں گے نہیں, کیونکہ پڑھے لکھے کا اتنا بڑا اہنکار ان کے دل میں ہوگا اور ان کے کانوں پر مور لگی, وہ کسی کی بات کو مانیں گے نہیں. اپنے حصہ کے جو کچھ ہمیں آتا کسی کو نہیں آتا. اب تیسرا چوتھا, تیسرا تو لیا نہیں, اب چوتھا رضوی خان کے پاس گئے جو کہ درباری تھا, حضوری تھا. اب اس نے خبر پوچھی, بھائی رکا تو ٹھیک لیا ہے, قرآن کی آیتیں ہیں صرف آنکھوں پر سویکار کرتے ہیں, پر یہ تو بتا فقیر کہاں ہے, کس نے یہ چٹھی بھیجی ہے؟ تب کان جی بھائی نے کیا کہا؟ کہ جی جہاں چار تھے پیغام فقیر نے بھیجے ہیں, اسی طرح سے دیکھے ہیں, چوتھا حضور آپ کا ایک سیدھی پرات کا اور باقی وہ دینے جاتا ہوں. تب اس نے کیا جواب دیا؟ جاؤ شاباش, اسے بھی پہنچا کے آؤ, پھر میرے سے بات کرنا, جو سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ویسے ہم بھی جواب دیں گے. آپ وہاں سے چل کر کے سدھی پولاد کوتوال کے گھر, جو پولیس کے والے تھے وردی وردی پہن کے, وہ کھڑا تھا تیار اپنے کسی کام پہ جانے کے لیے, جا کے اس کے ہاتھ میں رکا دیا اور ساری خبر گئی. کہنے لگے, یار تو کون سی مصیبت لے آئے, میرے باپ نے بھی کبھی نہیں قرآن پڑھا ہوگا, نام تو میرا ضرور رضوی خان, میں کبھی مسجد نہیں گیا, کبھی نماز نہیں پڑھی, پولیس والوں کو فرصت بھی کہاں ہوتی ہے, اس میں کوئی جھوٹ والی بات ہی نہیں تھی. کہ لگے نام تو ضرور میرا مسلمان ہے, میں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں, قرآن دیکھا نہیں, مسجد میں نہیں گیا, نماز میں نے نہیں پڑھی. پر ٹھیک ہے, جب تم رکا لے ہی آئے ہو, اب حضور اللہ تعالیٰ کے دستوں والا, ایسی باتیں ہیں, بڑے بڑے قاضیوں کو دے آیا نا, شیخ نظام کو دے آئے ہو, اسلام کو دے آئے ہو, ان سے جواب لے آنا, پھر میرے پاس آنا. بس آپ پانچوں کو چٹھیاں دے دی, دے کر کے واپس آئے. پہلے سب سے کن سے ملے؟ او سندر ساتھ جو ان کی رکھوالی کے لیے تھے, ان کو بتا دیا بھی ایسی ایسی بات ہے, لگ بھگ کام ہو گیا, چٹھیاں پر تو میں دے آیا ہوں. اب وہ سارے مل کر کے چاندنی چوک میں آئے, سوامی جی وہاں بیٹھے تھے, آ کر کے ساری بات بتائی. پھر دوسرے دن سوامی جی نے کہا, اچھا بھائی کانجی بھائی, اب تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اب تو جواب ہی مانگنا ہے, جاؤ ان سے جواب مانگو. گئے, اس نے شیخ اسلام کہنے لگا, بھائی ہمارے سے نہ پہلے جواب مانگو, استاد بڑے ہیں ان کے پاس جاؤ. استاد کہنے لگا, بھائی تمہیں کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے, یہ بات تو سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی. پانچوں جنے ہم ملیں گے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, عقل خان سے ملو. وہ دوسرے پر ڈالتا, وہ دوسرا تیسرے پر ڈالتا ہے, کوئی جواب دیتا نہیں. 2 مہینے تک برابر کان جی بھائی سب کے گھر جاتا رہا, لیکن اب نہ تو وہ, اب آخر کان جی بھائی ان کو کیا کہتے ہیں, حضور یہ بتاؤ میں نے کیا قصور کیا, میں کوئی مزدوری اور پکڑ سکتا نہیں, اور فقیر جو ہے وہ مجھے پیسے نہیں دیتا, وہ کہتا بھائی جو کام پورا کر پیسے لے لے. حضور اگر اس کا معائنہ تمہیں نہیں آتا تو اتنا ہی لکھ دو, نہیں آتا چھٹی, میں تو پیسے لینے والا بنوں. آپ اب وہ ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے سن کر کے اس بات, کہنے لگے یہ کیسے لکھ کر کے دے دیں کہ آتا نہیں, آتا تو کہہ نہیں سکتے اس لیے کیونکہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں لکھی ہوئی, یہ بھی لکھ کے دیتے نہیں اور جواب بھی نہیں دیتے. 2 مہینے تک پریاس برابر کان جی بھائی رو جاتے ہیں, کسی نے بھی جب جواب نہیں دیا, پھر سوامی جی نے سب سندر ساتھ کو بلایا, تب لال داس جی کہتے ہیں کہ سوامی جی اگر سنندوں کی کتاب لے جا کر کے ہم جمعہ مسجد پر پڑھیں تو وہاں تو قاضی سنیں گے, سنند اور قرآن کو جو تو ہے نہیں. اب تب جب ان کو خلاصہ سنا جائے گا اور سارے میں نے بتائیں گے تو مسلمان یقین لے آئیں گے. سوامی جی نے کہا اچھا بھی یہ بھی کر دیکھو. کچھ سندر صاحب کو لے کے لال دادی جمعہ مسجد کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں امام مہدی کی اور محمد صاحب کی تعریف کی, یہ 2 سنند سنند گرنتھ میں آتی ہیں, خاص کر سنند محمد کی, سنند امام مہدی کے ظاہر ہونے کی, ان کو لگے سب گانے کہ سب نور ہی نور, لال ہی لال کہاں ہی پر ہوا ہے, ہو گئے سب زرد اور لال کوئی نہ ہوا بنا ایک محمد. اس کا ارتھ کیا ہے कि 120,000 पैगंबर हुए जो अपने को लाल लाल कहते थे कि हम पैगंबर हैं, पर मोहम्मद साहब के बिना और कोई पैगंबर हुआ ही नहीं, क्योंकि जब कोई अल्लाह से मिला ही नहीं, पैगाम कोई लाएगा तभी ना किसी से, अगर कोई मिल के आएगा, मानो कोई द्वारकादास जी से मिला ही नहीं और जयपुर जाकर के कह दे क्या भाई क्या संदेशा लाए हो, तो क्या कहेगा? अब उनको पैगंबर तो नहीं कहा जा सकता, मिलने वाला तो एक मोहम्मद था जो अल्लाह ताला से बातें करके आया, क्योंकि राज्य की शक्ति थी और उन्होंने आकर के ये बातें कही कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा, मैं इसके सामने देता हूँ। अब वो सारी चीजें लिख करके चिट्ठियों में लिखी हुई थी, अब जवाब कैसे देवें और इनकार कैसे करें? अब वो सुनंदे खोल करके लालदास जी सुंदर साहब के साथ मोहम्मद साहब की सिफत और इमाम मेहदी का 11वीं सदी में जाहिर होना बैठ करके पढ़ते हैं, सुन करके मुसलमान घायल होते हैं, कई रोते भी हैं, चोट लगती है, लेकिन यकीन क्यों नहीं लाते कि वो किताब लिखी हुई हिंदी में थी और उस वक्त हिंदी वाली किताब क्या कोई भी पत्र, किसी की एप्लीकेशन, किसी का प्रार्थना पत्र दरबार में स्वीकार ही नहीं होता था, हिंदी की चिट्ठिया पढ़ बादशाह का क्या सुनेगा, उस पर अमल ही नहीं करना, तो इस वास्ते हिंदी की किताब को देखकर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब वहां पर नंदलाल घड़ियाल जी, वो उसने बातें सुनी, कहने लगे भाई ये हिंदू तो हैं और पढ़ते कुरान हैं, तब उन्होंने पूछा कि भाई ये वाणी कैसी है और किसने दी है तुमको, तब उन्होंने स्वामी जी का पता दिया कि भाई कोई श्रद्धा से पूछता है तो एड्रेस दे देना चाहिए। कहने लगे चांदनी चौक में स्वामी जी बैठे हैं, उन्होंने हमको हिंदू पर पूछ लिया, भाई नंदलाल है हिंदू है, ठीक है कोई अंकुरी होगा, उसने पता पूछकर अपने भाई रामचंद्र को साथ लेकर दोनों भाई चांदनी चौक में आए, आकर के स्वामी जी से चर्चा सुनी, चर्चा सुन के दूसरे दिन ही तारतम परिवार सहित ले लिया, ऐसे अंकुर जागृत होते हैं जो परमधाम की आत्मा होती है। तो नंदलाल कहते हैं स्वामी जी आप किस बात के लिए परेशान है, ये जो रुका आप उनको देना चाहते हैं 2 महीने से और जवाब नहीं देते, मैं 1 दिन में जवाब ले देता हूँ आपको, इनके ऐसी की तैसी जवाब कैसे ना देंगे ये। समझी ने कहा तुम कैसे ले दोगे, कहने लगे ये रुका लिख के मुझे दो, मैं रात को देता हूँ ड्यूटी उसी मोहल्ले में और मैं जुम्मा मस्जिद के गुसल खाने को बंद करके ये रुका ऊपर चिपका दूंगा, अब सुबह आएंगे जब काजी लोटे उठाएंगे तो पानी कहाँ से लेना उन्होंने, गुसलखाने से, और गुसलखाने का दरवाजे के बंद जब ऊपर रुका पड़ा होगा तो फिर वो कैसे जो है उनके कानों तक औरंगजेब के दरबार तक कैसे नहीं ये बात पहुंचेगी। स्वामी जी को ये बात जची के भी बात, ठीक है अब रुके में क्या लिखा, इतला आम जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना, क्या सूचना लिखी कि जो कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाला है वो इस रुके को पढ़े बिना या इस रुके को सुने बिना आज जुम्मा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेगा, उसको अल्लाह ताला की लानत होगी और वो काफर होगा। वो सातों निशान क़यामत के फिर लिख दिए और लिख करके फिर दस्तखत कर दिए, रुका नंदलाल को दे दिया। कहने लगे स्वामी जी कोई चिंता ना करो आज रात को चिपक जाएगा, अब रात को 2-2.5 बजे तो दुनिया सारी सोई पड़ी होती है, पहरेदार वो चौकी पर रहा, खुद ही वो पहरा दे रहा था वहां, पहले से घर से ही गोंद को पीस के ले गया था और थोड़ा सा लेके पानी गुसल खाने से गोंद को रख के वही कर लिया गीला और रुके को करके उल्टा कोने चारों के ऊपर लेस करके गुसल खाना किया बंद और रुका दिया चिपका। अब 4 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती थी, वो अपने घर गया, अब आया बड़ा काजी छोटा काजी, अब रुका बंद वहां रोशनी, रुका लिख रखा है कि जो इसको पढ़े बिना और सुने बिना जुम्मे मस्जिद में जाएगा उस पर खुदा की लानत होगी, अब कौन अंदर जाए। 7 निशान क़यामत के लिख रखे हैं, अल्लाह ताला आ चुके हैं और क्या लिखा है, जिसको जरूरत हो हम तुम्हारे दिल्ली शहर में बैठे हैं हमको ढूंढ लें, ये विश्वास लिख दिए। अब किसी की हिम्मत ना पड़े कि भाई गुसलखाना खोल लें, अब गुसलखाना खोलते हैं तो रुका फटता है, इस वास्ते किसी ने लोटा भरा ही नहीं और जो नमाज पढ़ी नहीं रखी, एक आया काजी दूसरा आया चौथा आया 10 आए 20 आए फटते चले गए, अब जो नमाज तो किसी ने पढ़ी नहीं, लौट करके अपने अपने घरों को जाने लगे। और जा करके एक से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, ऐसी हवा फैली कि 9 बजे तक सारी दिल्ली को पता चल गया कि आज जुम्मा मस्जिद के दरवाजे पर कोई रुका चिपकाया पड़ा है। अब सामने ही लाल किले में औरंगजेब का दरबार, बादशाह आकर के जब बैठा अपनी कुर्सी पर तो क्लर्क वजीर सारे लोग बैठे थे, जैसे आजकल भी आप देखते हो ना क्लर्क लोग कुर्सियां हाजिरी लगा देंगे रजिस्टर पर, फिर जाकर के पहले दफ्तर फाइल नहीं काम शुरू करेंगे, हाँ भाई राजीव ने क्या किया उस पर चोरी का इल्जाम लगा, पहले सियासत की बातें अवश्य शुरू से ही चली आती। तो एक दूसरे से तुमने रुका सुना, तुमने रुका पड़ा, तुमने रुका पड़ा। अब बादशाह के को कान बहे तो थे नहीं, अब जब चारों तरफ बादशाह और गौर से सुनने लगा ये बात क्या कर रही है, चारों तरफ हो रहा रुका रुका रुका, रुके का ही रुका हो रहा है, ये बात क्या है। बुलाया उसको अपने हजूरी को, शेख सुलेमान को, वही शेख सुलेमान जो सोने बनाने का ढंग सीखना चाहता था, उसको बुलाया, कहने लगे क्या बात है, क्या रुका रुका हो रहा है, बताते क्यों नहीं। कहने लगे हजूर रात को कोई आदमियों ने, आदमी तो पता नहीं हजूर, क्योंकि पहरेदार कहता है मैंने किसी को देखा नहीं, गुसल खाने के ऊपर रुका चिपका रखा है कोई, और उसमें 7 निशान क्यामत के हैं, और ऐसी ऐसी बातें लिख रखी हैं कि मैं अल्लाह ताला दुनिया में आ गए हैं और दिल्ली में बैठे हैं। अब औरंगजेब इस चीज की तलाश में था, जरूर शरीयत के अंदर था लेकिन कुरान के वास्ते उसको पता था कि फर्दा रोज में अल्लाह ताला ने आना है। फर्दा रोज का अर्थ साफ है, जो कुरान को जानने वाले हैं कि फर्दा रोज कहते हैं कल के दिन को, और कल का दिन कब आएगा, जब खुदा के दुनिया के 1000 साल बीतेंगे और खुदा का दिन 1 बीतेगा, फिर 11वीं सदी में इमाम मेहंदी ने आना है, कहा कि जाओ रुमाल गीला करके चारों तरफ से रुके को गीला कर लेना और बिल्कुल संभाल के लाना, फटे नहीं, उतार के लाओ। अब गया वो रुके को भिगो करके कोने चारे लगाए, गोंद फिर गीली हो गई, उतार के लिया, ला के सामने रख दिया। जब पड़ा औरंगजेब ने रुका, रोम रोम कांप उठा। उसी वक्त जो बड़ा उसका वजीर था उसको कह के इस कमबख्त को मार मार के जूते जो है दफ्तर से निकाल दिया। कहने लगे तू ये बता तुझे हमने दफ्तर में रखा कैसे है, ये रुका क्यों चुपकाया गया, क्योंकि मोमिन मुझे मिलने चाहते थे मेरे दरबार में, वो जरूर आए होंगे लेकिन तुमने उनको मेरे पास भेजा नहीं, मुलाकात नहीं करने दी, वरना वो कोई चोर थोड़े हैं, वो कोई डाकू थोड़े हैं जो जाहिरी कहते हैं कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला जाहिर हो चुके हैं, वो चोरी से काम नहीं करेंगे, उनको मजबूरी से यह काम करना पड़ा है, निकाल दो इसको दफ्तर से बाहर, नौकरी खत्म, उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब औरंगजेब क्या कर सकता है, खुद तो नौकरी वजीरी चपरासी का काम नहीं कर सकता, तो शेख निजाम जो कि राजा का गुरु है, उस्ताद है, उसका लड़का जो था उसको उस ड्यूटी पर रखा और हदायत कर दी कि जो कोई भी रुका कभी लेकर के आवे, हर तरह के रुके मेरे पास पहुंचने चाहिए, दरख्वास्त आवे, आप तुम ऐसा करो दिल्ली शहर में ढिंडोरा पिटवाओ। क्या ढिंडोरा पिटवाओ, कि रोज जुम्मे के बादशाह ईदगाह में जा करके नमाज पढ़ने जाएगा और मैं खुद बादशाह खुद घोड़े पर खड़ा रहेगा, जिसने रुका चिपकाया है वो रुका देने के लिए वहां आवे और तुम वहां चल खड़े रहना, मेरे सामने उस रुके को लेना, तब भी मैं ढूंढ सकता हूं। अब एक एक आदमी को तो बादशाह नहीं पूछने जाएगा भी रुका किसने चिपकाया है, ठीक, उसको नौकरी मिल गई। अब जिस वक्त वो गया घर, बाप लड़के को बुला के कहते है बेटा तुझे ये सारी बात का पता नहीं दिया मैंने, 2 महीने तक वो आदमी रुका लेके मेरे घर भी आए और ये पड़ा है रुका, अगर तूने ये ढिंडोरा दे दिया और वो लोग बादशाह के सामने हाजिर हो गए तो समझ ले फिर तेरे अब्बा जान की भी गर्दन बचेगी नहीं, उस्तादगिरी की कुर्सी नहीं रहेगी, भूखे फकीर बन जाएंगे। जैसे आज शेख सुलेमान को हटा दिया गया है, तेरी नौकरी भी जब्ती रहेगी और मुझे भी किसी ने उस्ताद मानना नहीं। कहने लगे अब्बा जान फिर करूं तो करूं क्या, ढिंढोरा तो जरूर पिटवाना है। कहने लगे हाँ ढिंढोरा पिटवा, कि जिस किसी को भी कोई तकलीफ है, जैसे सीमेंट नहीं मिलता उस समय की बातें तो सीमेंट की नहीं, मतलब कोई फरियाद कोई करना चाहता है औरंगजेब बादशाह से और मिलना चाहता है, वो अपने अपने रुक के लिख करके ईदगाह, जो आज भी फिल्म स्थान के पीछे आज भी वही ईदगाह है, बादशाह वहां पर खड़ा रहेगा, वो रुक के अपने लेकर के आ। बादशाह घोड़े पे सवार होके जुम्मे वाले दिन वहां चला गया और घोड़े पे खड़ा, सामने वो जो नौकर अब्दुल्ला है वो खड़ा हुआ है, जो कोई भी आता है उसके रुक के लेते जाता है। अब जब शहर में ढिंढोरा ये पिटवा दिया गया कि जिसको कोई तकलीफ है और उसकी दरबार में सुनी नहीं जाती, वो रुक के लेकर के दरख्वास्तें वहां आए, तो दिल्ली की हजारों की जनता उठ करके चल पड़ी अपनी तकलीफों की दरख्वास्तें लेकर। उसमें दो सुंदर साथ अपने थे, एक लालदास जी और एक निर्मल दास, ये दोनों जने रुका लेकर के गए। अब वो पढ़ता जाता है जब मोमनों वाला वही रुका आया जो गुसलखाने पे चिपकाया गया था, बच्चे ने लेके उसके कर दिए टुकड़े, फाड़ दिया और फाड़ करके जेब में डाल दिया कि ये रुका जाहिर होने देना नहीं, नहीं तो मेरा बाप मरेगा। इस वास्ते वो रुका अब आशा करो देख रहा है सामने, लेकिन उसने ये थोड़ा देखा भी एक एप्लीकेशन फाड़ के उसने जेब में डाल दी, ऐसी चलाकी से उसने टुकड़े किए। अब ये बात लालदास जी से सहन की, लालदास ने बस एक गुस्सा पर ही नहीं मारा, बाकी ऐसे शब्दों में लिखा है लालदास जी को आ गया वेश, कहने लगे को काफ़ूर कुर्सी के नशे में आकर खुदा को भी भूल गए हो और तुम खुदा के हुक्म को फरमान को जो है पालन नहीं करते हो, डरते नहीं हो, और वास्ते हमारे आज बादशाह यहाँ खड़ा है, सुलेमान को हमारे वास्ते जो है नौकरी से हटाया गया, रुका चिपकाने वाले हम हैं और तुमने हमारा रुका, अरे उस खुदा से तो डरो। ठीक है कि चार दिन राज तुम्हारे हाथ में आ गया तो क्या हो गया, लेकिन आखिर एक दिन तो तुम्हारा हशर क्या होने वाला है, कुछ होश करो। तब लालदास निर्मल दास को कहते हैं कि निर्मल दास डरना किस बात का, जब बादशाह आके ही है हमारे पास खड़ा है तो मेरे पीछे आ, मैं चलता हूं जाके बादशाह को वहीं बात करता। अब बादशाह लगभग एक घंटे से खड़ा था और मां ढेरों ढेर एप्लीकेशन होगी, बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ कि इमाम मेहंदी से रुका पीने वाला एक आदमी क्या कुत्ते, इतने आदमी रुका लेकर के आए हैं, ये बात समझ उसकी नहीं आई। अब समझे भी क्या समझे, 10,000 रुके थोड़े आएंगे, इतने जो रुके आ गए। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, आने तो लाल किले में मेरी टेबल पर ही है, जब मेरी मेज पर आएंगे तो मैं देख लूंगा क्या क्या बात है। अब लालदास जी जैसे ही निर्मल दास जी को लेकर के औरंगजेब से मिलने चले, औरंगजेब ने जो है घोड़े को एड़ी लगा दी, बादशाह का घोड़ा हवा से बातें करने लगा, लालदास जी पीछे आगे तो सही लेकिन 2 फरलांग तक घोड़ा आगे निकल गया, औरंगजेब से बातचीत नहीं हो सकी। अब यहां से जो लालदास जी को गुस्सा चढ़ा, बस चिट्ठी लिख के निर्मल दास को भेज दिया क्या कि स्वामी जी दिल्ली में रहते हुए 10 महीने हो गए और हम एक मौत से डर रहे, क्योंकि आपकी कृपा से आपके तत्व ज्ञान से कुरान के मायने तो सारे आपने खोल के हमको समझा दिए हैं कि हमारे बिना कोई भी कुरान के मायने खोल सकता नहीं। जब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, मोहम्मद का नाम ले रहे हैं, खिलवत खाने की बातें इसमें लिखी हैं, तो डर किस बात का, एक मरने का है। स्वामी जी 10 महीने हमने आपका हुक्म माना है, अब एक बात आशिकों की भी देखो, अब कुछ मैं करना चाहता हूं, या तो पैगाम ही देके आऊंगा या फिर प्रणाम बार बार नहीं होगी जी, हम स्वामी जी प्रणाम रुका दे आए या फिर प्रणाम करेंगे तो परम धाम में चलते जाएंगे। पर एक बात, हमारी मेरा प्लान जो मैंने बनाया है वो हमें कर लेने दो, पर आपके हुक्म के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना उसको मैं करूंगा नहीं। इस वास्ते कृपा करके आप अपना आशीर्वाद दे दो और फिर मैं जाता हूं, अकेला औरंगजेब को जाकर संदेशा भी दे दूंगा और मैं बातें भी औरंगजेब से करूंगा, मैं लाल किले ही जाऊंगा सीधा। आएगी मौत आ जाए, मुझे मरने से क्या डर है। और स्वामी जी के पास जब रुका पहुंचा, स्वामी जी ने तुरंत उसी समय संदेशा भेजा लिखकर, लालदास केवल मेरे आने के इंतजार कर रात रात, सुबह होते ही तुम अपना प्रोग्राम बनाना, पर जरा मेरे से मुलाकात कर ले, बस और कुछ नहीं। अब इधर से जो 10-12 और साथी मिले सब तैयार हो गए कि बिल्कुल लालदास तुमने ठीक कहा है। 10 महीने हो गए फकीरों के इधर धक्के खाते हैं, कभी उनको चिट्ठियां देते हैं, कभी रुखे चिपकाते हैं, इस तरह से तो कायरों और बुजदिलों की बातें हैं। जब हम मोमिन अर्श के हैं, मरने से तो दुनिया वाले डरे, जिन्होंने कर्मों के हिसाब से आवागमन के चक्कर में इन नरकों में स्वर्गों में जाना है, हम क्या डरे। हमारी पार आत्म जब बैठी परम धाम में है तो उसके वो पार आत्म हमारी कब नसीब होगी, जब हमको मौत आए और शरीर छूटे, फिर राज्य का हुक्म करते पालन करते हुए अगर मौत आएगी तो इससे अच्छी मौत कहने की है। इस वास्ते हमें मरना है, तैयार हो जाओ जिसने मरना। सारे पूछे भाई प्रोग्राम तो बता दे, कहना कि प्रोग्राम बस यही है कि मरना, या मरना है या रुका देना, जवाब और तीसरा कुछ ही नहीं। रुका देने के लिए चलेंगे, मार डालेंगे तो मर जाएंगे, बातें हो जाएंगी तो जो होगी आके स्वामी जी को बता दें। अब ये तो हाथ राज्य के है, अब रातों रात ले कपड़ा खरीद। उन्हें का डर सिर्फ इस धोती कुर्ते ने सारे ने मार रखा है, जिसने हमें हिंदू बना रखा है। बातें तो यही करनी है, चाहे हमने धोती पहन रखी होगी और चाहे सूचना पहन रखा होगा, मुसलमानों वाली पोशाकें सिलवाओ। रात तो रात ही दर्जियों को दे करके पैसे 15-20 पोशाकें तैयार करवा दी। अब स्वामी जी पहुंचे सवेरे ही और पूछने लगे, बुलाया लालदास जी को, मोमनों को और जो थे, उनके नाम अभी सामने आ जाएंगे आपके, जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। स्वामी जी ने पूछा, क्या भाई लालदास क्या प्रोग्राम है। कहता स्वामी जी बहुत बुद्धू बना लिया आपने, हम आप नहीं बुद्धू बनेंगे, प्रोग्राम हमारे से पूछते हो, मालिक आप हो और प्रोग्राम हमारे से पूछते हो कि हमने करना क्या है। हमने एक ही जाना है कि बस या पैगाम देना है और या मरना है, आगे प्रोग्राम क्या है यह हमें नहीं पता, हम अंतर्यामी नहीं। वो शक्ति आपके पास है और आपके हुक्म लेकर के जाएंगे, बगैर आपके हुक्म के बिना नहीं जाएंगे। आगे मरने का प्रोग्राम हमारा होगा तो वहां मार देना, बचाने का प्रोग्राम होगा तो वापस बुला लेना, प्रोग्राम आपको पता है, हमारे से पूछते हो क्या प्रोग्राम। ये जोश देख करके मोमनों का, स्वामी जी कहते हैं शाबाश मेरे मोमनों, शाबाश। इसको मोमिन कहते हैं जो यकीन का इतना पक्का है और मर मिटने के लिए राजी महाराज के नाम पर तैयार है। जाओ, धनी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और ये कभी मत मुंह से दोबारा कहना कि तुम्हें कोई मारेगा। पैगाम भी तुम्हारा पहुंचेगा और बाल भी तुम्हारा कभी बीका होगा नहीं, कोई कष्ट आने वाला नहीं, चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं। राजी ने किसी जगह कुरान में यह नहीं लिखा कि मोमिन प्रचार के लिए निकलेंगे तो उनको कोई मार डाले, वैसे मौत भले आती है आ जाएगी, लेकिन राज्य का काम करने के लिए तुम जाओगे तो तुम्हें कोई मारेगा नहीं, ये विश्वास करके रखना। और उस दिन वही दृष्टांत मैंने आपको समझाया था, अभी राज्य का काम तो नहीं था, भोपाल के सुंदर साथ बैठे थे, गैस रिसने से 20,000 आदमी मर गए, एक भी सुंदर साथ की आंखों तक असर नहीं हुआ और ना कोई मरा। वैसे तो जन्म और मरण की बात है, शरीर छूटते ही रहते हैं, आज अमृतसर में क्या खुराफात कितने सालों से हो रहा है, लेकिन एक भी सुंदर साथ का उस राज्य मरा की मेहर से बाल भी कर नहीं होगा। वैसे सुंदर साथ मर रहे हैं उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, संकटों के हिसाब से, वो मरना जन्मना तो सबके साथ है। इस वास्ते अब ध्यान के साथ सुनना, 3 प्रकार के आशक यहाँ स्वामी जी ने कहे। एक तो लालदास जी के साथी जो बस यही सोचे बैठे हैं कि या मरना है या काम करना है, वापस अब खाली नहीं आएंगे स्वामी जी हम, लौट के तब आएंगे जब औरंगजेब से बातें कर लेंगे, वरना नहीं आएंगे। और मर गए तो प्रणाम परमधाम में कर लेंगे, प्रणाम ही तो करनी है चरणों में, वहां भी आपके चरणों में, यहां भी आपके चरणों में, हमें डर किस बात का है। अब जो दूसरे हैं जो ना काम करते हैं और ना करने देते हैं, वो लाल दास या दूसरे रहन दे रहन दे, लाल दास तू बड़े प्रोग्राम बनाता है, जैसे तू ही परमधाम का बड़ा मोमिन है, हम जैसे राजी मराता मार ही नहीं सकते, हम जैसे कुर्बानी नहीं कर सकते, ज्यादा गर्मी से नहीं कोई प्रोग्राम जल्दी से होता, अगले काम शैतान के होते हैं, सोचेंगे समझेंगे कुछ दिन और जरा शांति से रख। मतलब अंदर धक धक हो रही है कि भाई ये रुका चले गए औरंगजेब के सामने तो उसने मार डालना है, और हम ना जावें और ये भी ना जावें, क्योंकि ये काम करेंगे तो शान इनकी हो जाएगी, हमारे ऊपर पे कलंक लगेगा। स्वामी जी कहते हैं एक मोमिन तो मेरे ऐसे थे उस समय जब मर मिटने के लिए, उनको मौत के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कि बस स्वामी जी या मरेंगे या काम करेंगे, और एक ऐसे हैं ना करते हैं ना करने देते हैं, उसका भी पांव खींचते हैं। और कुछ ऐसे थे क्या लगे स्वामी जी हमें तो आपके चरणों का आसरा है, ठीक है ये शोभा इनकी है, नसीब होगा तो आत्म ले रखा है, परमधाम की आत्मा है तो ले चलना, हमसे ये काम नहीं, मुनकर ही हो गए, छोड़ ही दिया ईमान। अरे भाई ये शोभा राजी देते हैं, किसी आदमी की ताकत नहीं होती, लालदासी के पास क्या ताकत थी, अगर उनकी अपनी ताकत थी तो 10 महीने से क्या करते रहे, अब ये ताकत किसने बख्शी, अभी वाणी में सुनना। तब स्वामी जी ने कहा कुछ इच्छा है, लालदासी कहते जी एक इच्छा है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लौट के जिंदा वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमने जाकर के अपने आप को मोमिन कहना है, अल्लाह ताला मोहम्मद रसूल का इमाम मेहंदी का नाम लेना है, और वो वहां के काजी हमारे साथ, ये गंगा राम दया राम चंचल दास जो दिल्ली के सुंदर साथ हैं, इनको तो वो पहचान जाएंगे, ठीक हम बाहर से आए हैं, भले हमें ना कोई जानता होगा, गंगा दास दुकानदार है, उसके सब रोज करियाने की दुकान है, रोज सामान मुसलमान लेते हैं, इन्हें नहीं पहचानते क्या, चंचल दास को नहीं जानते, 7 सुंदर साथ बाहर के थे, 5 दिल्ली लोकल के सुंदर साथ थे, ये 12 जने तैयार हो गए। इस वास्ते स्वामी जी परम धाम में कभी प्रसाद नहीं मिलता आप सुंदर साथ जी, ये प्रसाद की कीमत मोमनों की आखिरी तमन्ना, ये स्वामी जी बस हम अपने हाथ से आज रसोई बना ले, ये 12 मोमन और आप उसको आरोग लो, अपने हाथ से हमें प्रसाद दे, बस हमें और कोई तमन्ना नहीं, क्योंकि ये जूठनी ये प्रसाद आपका परम धाम में नसीब नहीं होना, क्योंकि वहां तो ना खाना है ना कुछ पीना है, इस वास्ते प्रसाद आपका चाहते हैं कुछ। स्वामी ने कहा बनाओ रसोई। आप लालदास जी ने अभी लालदास जी और सुंदर साथ रसोई बना के तैयार करते हैं, और अब सुनिए क्या होता है, बस रसोई अपने हाथ से उन मामलों ने बनाई, आटा गूंदा चावल बनाया जो कुछ भी उनके दिल में आया भाव, रसोई बना के तैयार थाल श्री जी के सामने रखा, स्वामी जी आरोग भी रहे हैं और बुला बुला करके उन 12 मोमनों को अपने हाथ से प्रसाद दिया, और जिस वक्त प्रसाद देते थे बस नजर से ही शक्ति उनके नजर में डाल देते थे, घबराइयो मत तुम्हारे सिर पर खड़े हैं राजीव नगर, जाओ कुछ नहीं, घबराना नहीं, ईमान ना छोड़ना, प्रसाद ले रहे हो राजीव नगर का, चिंता नहीं करना, बस और ताकत आ गई जब राज्य का इतना आशीर्वाद आ गया, बस तब भोग लगता है, बाजार से भी कोई मिठाई ले आया कोई कुछ ले आया, स्वामी जी आरोग रहे हैं, चलो चलिए जहां से चलानी चलाइए, कोई जो है बाजार से भाग भाग के अब औरों के दिल में भागा है, चलो हम बना तो नहीं सके हैं, कुछ बाजार का ही सामान ले आए, कोई मिठाई ले आया कोई फल ले आया, वो ला करके रख दिया रुबाने में, सब खुश दिल होकर के स्वामी जी ने सबको प्रसाद दिया आशीर्वाद दिया, और मोमिनों ने जिन्होंने जो है थाल बनाया था बड़े खुश हो रहे, लोग जीवन सफल हो गया, आज राज्य का प्रसाद मिलेगा, मौत आती है तो आ जा, मरना तो है ही एक दिन, और इत खुश होकर के स्वामी जी ने भी बस अपने दिल से आशीर्वाद जब दे दिया, बाकी फिर था किसी की ताकत है जो कुछ मार सकेगा, जाओ मोमिनों काम सब ठीक हो जाएगा, अब लाल दासी कहते हैं स्वामी जी ये आशीर्वाद हो गया, आप कृपा करके दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली खाली कर दो आप यहाँ से। स्वामी जी पूछने लगे क्यों, कहने लगे हम 12 जने हैं और मार पड़नी है हमें जरूर, क्योंकि जहाँ हम हिंदू के तन में जाकर के अल्लाह मोहम्मद की बातें कहेंगे वो हमें बख्शने वाले नहीं हैं। ठीक है आप हमारे सिर पर खड़े आशीर्वाद है, उस मार से ही डर के उन्होंने पूछना है कहाँ इमाम दी है तुम्हारे, और किसी ने आपका बता दिया पता, तो दुष्ट लोग हैं ना, और आपको जरा भी कोई बात किसी ने कह दी तो फिर ये मोमिन कहाँ जाएंगे। इस वास्ते आप चले जाइए यहाँ से। विचार स्वामी जी ने और लाल दासी ने करके कहाँ का प्रोग्राम बनाया, कामा पहाड़ी आज भी मथुरा से।